नमस्कार भारत, तारीख 31 अगस्त दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सरकार ने दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए की, ट्रेड यूनियनों को नहीं मंजूर, हड़ताल पर अड़े।
2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल देश के प्रमुख श्रमिक संगठन कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाइए, देश के अंदर तालाबंदी छटनी जो है उसको समाप्त कीजिए।
मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, मंत्री ने कहा इस्तीफा देकर करें राजनीति। पाकिस्तान के कराची शहर में थिएटर जारी तो है, मगर कलाकार शहर के हालात से डरते हैं।
हमारे ऑडियंस में से इस तरह का इंसान हो सकता है जो समझ रहा हो कि इस्लाम के खिलाफ हैं और हमें जो लोग ये कर रहे हैं उनको खत्म करना चाहिए।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। मजदूर संगठन केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाने के ताज़ा फैसले से खुश नहीं है। वामपंथी मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 2 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर को 242 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है और केंद्रीय कर्मियों को 2 साल का बोनस देने का भी ऐलान किया है। भारत के दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और पाकिस्तान से उत्पन्न चरमपंथ और रणनीतिक महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा की। जॉन कैरी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता है। जॉन कैरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी समाचार एजेंसी अमाक ने कहा है कि सीरिया के अलप्पो में एक हमले में आईएस के एक बड़े प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी की मौत हो गई है। अमाक समाचार एजेंसी के मुताबिक अलप्पो में चल रही सैन्य कार्रवाई के जवाब में ऑपरेशन के लिए सर्वे के दौरान उनकी मौत हुई है। अमरीका ने कहा है कि अलप्पो के पास अलबाब में हवाई हमलों में उसे निशाना बना गया था, लेकिन अदनानी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। विदेश में आईएस के हमलों के मुख्य सूत्रधार अदनानी की मौत से आईएस को बड़ा झटका लगेगा। एक साल की जांच में सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप को सही पाए जाने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सीरिया पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद की सुरक्षा बलों ने कम से कम 2 हमलों में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। जांच की अगुवाई कर रही विक्टोरिया गाम्बा ने यह कहा।
The
leadership panel ने पाया कि पुख्ता जानकारी मौजूद है कि 3 मामलों में ये पक्ष शामिल था। 21 अप्रैल 2014 के तालमानेस और 16 मार्च 2015 को सारमीन के हमले में सीरियाई सेना ने खासतौर पर हवाई हमलों में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया था। विक्टोरिया गाम्बा के शब्द। वहीं सीरिया के संयुक्त राष्ट्र में दूत बशर जाफरी ने कहा है कि इन दावों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सीरिया ने 3 साल पहले सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के निलंबित राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने महाभियोग के मुख्य अभियोजक ने कहा है कि देश रूसेफ के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से तंग आ चुका है। मिगुएल रेले जूनियर ने महाभियोग पर बहस को खत्म करते हुए सीनेटरों से रूसेफ को बर्खास्त करने के लिए वोट करने की अपील की है। वहीं जिल्मा रूसेफ के वकील ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। श्रमिक संगठनों को आने वाली 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और बोनस पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को कल स्वीकार कर लिया। सरकार गैर कृषि कर्मचारियों की न्यूनतम एक दिन की मजदूरी 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए देने पर राजी हो गई। यही नहीं, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर से 2 साल का रुका बोनस भी देगी। श्रम संगठनों की 12 सूत्री मांगों पर बातचीत के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय मंत्री समिति बनाई गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
जो मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड है लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में, और उसकी मीटिंग हुई और सरकार ने उसकी सिफारिशों को माना है और इसको ₹350 पर डे, 350 रूपए पर दिन के हिसाब से तय किया गया है।
लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली की इस घोषणा से मजदूर संगठन खुश नहीं है। वामपंथी मजदूर संगठनों ने 2 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल अंजान से पूछा कि वो सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से संतुष्ट क्यों नहीं है।
केंद्र सरकार का ये फैसला सच्चाई से बहुत दूर है। देश के अंदर 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल देश के प्रमुख श्रमिक संगठन कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाइए, देश के अंदर तालाबंदी छटनी जो है उसको समाप्त कीजिए, लोग संघर्ष के मैदान में है, 2 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, बैंक बंद होंगे, LIC बंद होंगे, सारे केंद्रीय प्रतिष्ठान बंद होंगे, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी सड़क पर होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होंगे, 350 रूपए में कोई काम हो सकता है? इतनी महंगाई है,
छोटे छोटे जगहों पर काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर, गांव के खेत मजदूर, छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान हैं, वो क्या करेंगे? न पानी पड़ रहा, सूखा अलग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता, किसान पैदा करके कुछ पा नहीं रहे तो खेत मजदूरों को नहीं दे पा रहे, गाँव से शहर की तरफ पलायन हो रहा है और वही शहर के मजदूरों को आप जो है जो कह रहे हैं मजदूरी न्यूनतम बढ़ा रहे, क्या मजदूरी है? आपने कहा था महंगाई रोकेंगे, महंगाई नहीं रोक पाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हुए, गरीब की थाली के दाम को नहीं बढ़ने देंगे, उसे महंगा नहीं होने देंगे। और उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को भारत सरकार के आर्थिक विकास मंत्रालय ने बताया कि पिछले 23 महीनों के अंदर सबसे जबरदस्त महंगाई रही है। आज कम से कम 18,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, उस बुनियाद पर आप दैनिक मजदूरी बढ़ाइए।
जो न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ती रही है उसमें क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है एक बार में इतना ज्यादा बढ़ा देना?
मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 5-5 लाख करोड़, 1,80,000, 1,70,000 करोड़ जो ड्यू है, ऐसे ऐसे देश के कारपोरेट घराने हैं जिन्होंने 500% का मुनाफा कमाया है, उनको टैक्स की रियायत देने की क्या जरूरत है? ये सवाल देश के गरीब लोग पूछना चाहते हैं सरकारों, क्या ये देश सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो बड़ी दौलत पैदा करते हैं? साधन संपन्न लोग ही सब कुछ करेंगे, कानून भी उनके हक में, संसद भी उनके हक में, बजट भी उनके हक में, तो फिर गरीब के लोगों के ऊपर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ उनके सर पर लादना है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल अंजान बता रहे थे कि क्यों 350 रुपए की दिहाड़ी मजदूर संगठनों के लिए कम है और क्यों वामपंथी मजदूर संगठन 2 सितंबर को हड़ताल पर जाएंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत आए हैं और उनके साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं, कारोबारियों का एक दल भी उनके साथ है। कल उन्होंने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में पाकिस्तान से कहा कि वो पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
कम से कम हमारे देश की इतनी अपेक्षा तो है कि पठानकोट पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते, ये हमने कह रखा है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा हमें जरूर है और बातचीत तभी शुरू होगी जब कम से कम इन चीजों पर कोई कार्रवाई होगी।
उधर अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अच्छा और बुरा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। वो बोले,
I have most recently talked to both the Prime Minister and General...
कैरी कह रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेनाध्यक्ष रहील शरीफ से कहा है कि पाकिस्तान को चरमपंथियों का पनाहगाह न बनने दे। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने अमरीकी मामलों के जानकार प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा से पूछा कि जॉन कैरी का ये दौरा भारत अमरीका के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
आतंकवाद को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने भारत की समर्थन की है और उनके स्टेटमेंट में जिस तरह से उन्होंने हमारे विदेश मंत्री का जो वक्तव्य है उसको सपोर्ट किया है, जैसे कोई गुड टेररिस्ट या बैड टेररिस्ट नहीं होता, और जिस तरह से दोनों देशों ने साथ मिलकर ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रेनिंग हो रहे हैं बंद होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। वो अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आके अगर ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है और भारत का जो नीति है उसका समर्थन का संकेत माना जाएगा, जो कि ओपन सपोर्ट है।
क्या लगता है कि इस तरह के बयान का पाकिस्तान पर कोई असर होगा?
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे कोई भी अच्छे बात की कोई असर नहीं होता। पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ है, तो पाकिस्तान अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, मगर पाकिस्तान ये डेफिनेटली सोचेगा कि अगर भारत और अमेरिका मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करें तो पाकिस्तान के हित में नहीं होगा।
जॉन केरी के इस दौरे को कारोबार के लिहाज से भी बड़ा अहम माना जा रहा है, क्या कुछ समझौते हो सकते हैं इस दौरान?
बिल्कुल होंगे। देखिए पहले ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग माना जाता था, बट अभी उनको थोड़ा एलिवेट करके अब स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डायलॉग माना जाता है। इसलिए अमेरिका से जो पेनी पिटकर हैं उनका कमर्स सेक्रेटरी वो भी हैं, तो दोनों देशों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी और टेररिज्म को लेकर करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें अगर संपर्क सही ढंग से बनी रहे तो वो है आर्थिक व्यवस्था। दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो बिल्कुल सुदृढ़ होगा। कई सारे ऐसे बयान भी आए हैं कि दोनों देशों के बीच जो वाणिज्य चल रहा है वो पिछले कई सालों से 80% बढ़ गया है, और टारगेट यह है कि $500 बिलियन का वाणिज्य अमेरिका और भारत के बीच हो। साथ साथ अमेरिका का कई सारे कंसर्न्स हैं, इंडिया का भी कंसर्न है। जैसे इंडिया ये सोचता है कि अमेरिका का जो वीजा पॉलिसी और इंडियन जो अमेरिका जाते हैं उनके खिलाफ है, और भारत कभी कभी ये संकोच प्रकट करता है कि अमेरिका जानता है कि कई सारे भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी पैदा कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, फिर भी आउटसोर्सिंग को लेकर जिस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी होता है हमें थोड़ा बुरा लगता है। तो अमेरिका की तरफ से देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि मार्केट को और खोलो, IPR रिलेटेड जितने भी मैटर उसको सुलझाओ। तो कई सारे मुद्दे पर मतभेद तो है, मगर सबसे पॉजिटिव संकेत यह है कि दोनों देशों ने जिस तरह से रेगुलरली बातचीत करके डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं और संपर्क को बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत एक सकारात्मक दिशा पे दोनों देशों का संपर्क जा रहा है।
भारत अमरीकी संबंधों का विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र। रुख मध्य प्रदेश का करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से IAS अधिकारी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ने विवाद पैदा कर दिया है। IAS अफसरों के बचाव में किए गए इस पोस्ट के बाद प्रदेश के गृहमंत्री ने समझाया है कि अधिकारी सर्विस कंडक्ट रूल का पालन करें या फिर इस्तीफा देकर राजनीति करें। पूरा प्रकरण क्या है सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट में।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में जयललिता की जीत पर सोशल मीडिया में बधाई देने के बाद विवादों में आए नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर CB चक्रवर्ती एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर बुद्धिजीवियों पर प्रहार करते हुए IAS अफसरों का बचाव किया। उन्होंने लिखा, अगर कथित बुद्धिजीवियों ने भ्रष्टाचार से घृणा की होती तो IAS के प्रति घृणा के बजाय तो अब तक भ्रष्टाचार कम हो चुका होता। माना जा रहा है कि CB चक्रवर्ती ने यह पोस्ट हाल में भोपाल में हुई RSS की बैठक में नौकरशाहों पर लगे आरोपों की वजह से लिखा। इस बैठक में सबसे ज्यादा प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही का मुद्दा गरमाया रहा। बैठक में जहां संघ प्रदेश सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आया, वहीं मंत्रियों ने संघ को अपनी नाकामी की वजह बेलगाम नौकरशाही बताया। लेकिन इस पोस्ट ने प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा,
जहां तक नरसिंहपुर कलेक्टर के बारे में आपने कहा है तो मेरा इतना ही कहना है कि जो हमारे सर्विस कंडक्ट रूल है उसका हम सबको पालन करना चाहिए, और कोई भी विषय है तो उसकी अपनी मर्यादा है, सीमा है, और अगर उनको समाज सेवा का बहुत शौक है तो कलेक्ट्री छोड़ के आए, समाज सेवा का काम करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम करें, BJP में आना है तो हम सदस्यता दिला देंगे, या समाज सेवा का काम करें, पर जब तक सर्विस में है तो उसको सर्विस जैसी करें। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, और जो सीमाओं से बाहर जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
CB चक्रवर्ती पिछले हफ्ते प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल में नरसिंहपुर से हटाकर भोपाल मंत्रालय में पदस्थ किए गए हैं। लेकिन उनका जाना वहां के लोगों को नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि वो विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनका तबादला रोका जाए, लेकिन इस सब के बीच एक अन्य मंत्री प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य का कहना है,
जो ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम करती है शासन सम्मानित भी करता है, पर ब्यूरोक्रेसी यदि निरंकुश होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश जो 2003 के पहले था वही मध्य प्रदेश आ जाएगा? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो तेज गति से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सामान्य प्रदेश के विकास को लेकर एक जो दूरदृष्टि जो उनके साथ मिलकर काम कर रही है, और ब्यूरोक्रेसी का कहीं ना कहीं उसमें नीचे क्रियान्वयन में सहयोग मिल रहा है।
इसके पहले प्रदेश के एक अन्य आईएएस अफसर बड़वानी जिले के कलेक्टर रहे अजय गंगवार ने फेसबुक पर नेहरू गांधी परिवार की तारीफ कर दी थी। उसके बाद उन्हें बड़वानी के कलेक्टर पद से हटाकर सचिवालय में उप सचिव बना दिया गया था। इस मामले में उन्हें सरकार ने नोटिस भी जारी किया था। मध्य प्रदेश में अधिकारियों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्ट डालने के मामले हाल के वक्त में बढ़ गए हैं। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
तो आपने सुना कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया। और अब कार्यक्रम में अखबारों के पन्ने पलट लेते हैं। हरिता कांडपाल मौजूद हैं। हरिता, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबारों में अमेरिका और भारत के संबंधों में जो तेज़ी आ रही है उसकी खबरें हैं, और न्यूनतम मजदूरी दर जो बढ़ाई गई उसे लेकर मजदूर संगठनों की नाराज़गी, ये सब छाया हुआ है। इसके अलावा सबसे पहले जिक्र कर दूं इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य पन्ने पर, मुख्य जो तस्वीर छपी है जिस पर नज़र पड़ती है वो है गुड इवनिंग श्रीनगर। शाम के समय श्रीनगर के लाल चौक के बाजार की तस्वीर, रोशनी है, चहल पहल है और कुछ रौनक लौटी है। और 52 दिनों बाद कर्फ्यू लौटा है, कर्फ्यू हटा है और उसके बाद ये रौनक लौटी है। तो ये एक तस्वीर जिसका जिक्र मुझे ज़रूरी लगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर और छापी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जो कि खुद एक दलित नेता है, उन्होंने कहा है कि उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25% आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। ये दायरा जो 49.5% आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाकर 75% किया जाना चाहिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च जाति के वर्ग को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर बड़ी ही रोचक है। एक लड़की जिसने बीच में ही अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, उसे अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक MIT में प्रवेश मिल गया है।
और इस लड़की का जो नाम है, इसका नाम है मालविका राज जोशी, 17 साल की।
जी, और इन्होंने स्वेच्छा से अपनी, इनके माता पिता ने पढ़ाई छोड़वाई थी और वो घर पर ही पढ़ाई कर रही थी, और इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स में 3 बार मेडल जीत चुकी है और अब उन्हें स्कॉलरशिप मिली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है जिसमें आंकड़े आए हैं कि जिन बच्चों के साथ बलात्कार होता है उनमें ज़्यादातर वो उनका शिकार होते हैं जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं या फिर कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, और वो मालिकों के शिकार बनते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि एप्पल जो तकनीकी कंपनी है अमेरिका की, उस पर एक बहुत बड़ा उस टैक्स उस पर लगाया गया है। आयरलैंड में उन्हें भरने के लिए कहा गया है, करीब 14.5 अरब डॉलर का टैक्स भरने के लिए यूरोपीय आयोग ने कहा है।
हमारे जिन श्रोताओं ने कल शाम का कार्यक्रम सुना होगा, उसकी विस्तृत जानकारी हमने दी थी।
तो ये खबर सभी अखबारों में छाई है, दैनिक भास्कर ने इसे लिखा है। इसके अलावा 100 मीटर की रेस में अकेली दौड़ी 100 साल की मान कौर, ये तस्वीर मैं कई अखबारों में देख रही हूँ। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है ये। 81 सेकेंड में इन्होंने रेस पूरी कर ली और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, 100 साल की महिला।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हरिता। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, जनसत्ता का कार्टून मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये जिस बड़ी शीर्ष खबर की हम बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि मजदूरी बढ़ा दी गई 350 रुपये, और साथ में केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय जो कर्मचारी उनको बोनस की बात थी, तो इसमें एक भिखारी है, इरफान का कार्टून है, और भिखारी कह रहा है काश ऐसे ही 15 लाख हमारे खाते में भी आ जाते। और ये इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिता।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पाकिस्तान का कराची शहर अपनी सांस्कृतिक गहमा गहमियों की वजह से देश का एक दिलचस्प शहर माना जाता है, चाहे वो यहाँ के हिंदू मुस्लिम जिमखाना के रंगारंग उत्सव हों या मोहता पैलेस की नायाब नुमाइशें। फिर 80-90 के दौर में कराची कशमकश का शिकार हो गया और थिएटर करना भी मुहाल हो गया। अफसोस, आज भी कराची शहर में थिएटर तो हो रहा है, मगर कलाकार शहर में सुरक्षा के हालात अनिश्चित होने के चलते यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। सुनिए कराची से उरुज जाफरी की रिपोर्ट।
ये आवाजें हैं डायरेक्टर जोशिंदर कौर चग्गड़ के प्ले की रिहर्सल्स की। जोशिंदर ऑस्ट्रेलिया बॉर्न थिएटर डायरेक्टर हैं, जो पिछले कुछ बरसों से कराची थिएटर के जाने माने सुनील शंकर के साथ मिलकर कराची में थिएटर करती हैं। और उनका ये प्ले भी कराची के मसरूफ और कदीमी एम्प्रेस मार्केट के एक सीन से शुरू हो रहा है। जोशिंदर का पाकिस्तान में थिएटर का तजुर्बा कैसा रहा, जबकि वो गैर मजहब भी हैं? क्या कभी दोस्तों ने या मिलने वालों से उन्हें गैरियत का एहसास हुआ?
जिनके साथ मैं हैंग आउट करती हूँ, शायद, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता अच्छा कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज है।
जोशिंदर तो थिएटर डायरेक्ट करती हैं। थिएटर किस हद तक एक कलाकार की जिंदगी पर असरअंदाज होता है, नेपा ही की एक आर्टिस्ट इरम बशीर का कहना था।
मैं नहीं समझती हूँ कि एक परफॉर्मर ऐसी बात सोच सकता है, क्योंकि वो सेम टाइम शायद उसी सिचुएशन को पेश करने भी जा रहा हो। परफॉर्मर होता ही इस चीज़ के लिए, पूरा दिमाग उसका खुल चुका होता है इन चीज़ों के लिए। कराची के हालात तो आपको खुद भी नहीं पता होते कि कब बिगड़ जाएं।
कराची शहर में कुछ वक्त हुआ मशहूर कव्वाल अमजद साबरी कत्ल कर दिए गए। पूरे शहर में शोक का माहौल था। ऐसे वाकयात एक क्रिएटिव जहन पर क्या असर डालते हैं? भारतनाट्यम परफॉर्मर सुहाई अबड़ो का कहना था कि ये सब मायूस तो करता है, मगर डराता नहीं।
एज एन ऑर्डिनरी पर्सन भी हमेशा एक टेंशन रहती है कराची में, हालांकि अब हमें आदत भी हो चुकी है, लेकिन कभी अगर किसी परफॉर्मेंस से पहले इस तरह की कोई चीज़ होती है तो खौफ तो नहीं होता, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि हमें वैसे ही इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
ये तो आज के थिएटर वालों की बात हुई। क्या 80 और 90 की डेकेड्स में भी थिएटर करना मुश्किल था, जब मुल्क और शहर कराची सियासी जबानों में बटे थे और इस्टेब्लिशमेंट हावी थी? मशहूर और सीजन स्टेज आर्टिस्ट और तहरीक निस्वां की चेयरपर्सन शीमा किरमानी ने मुझे बताया कि पहले तो सिर्फ जबाबंदी का दौर था, यानी स्टेट और हुकूमत की कलाकारों और लिखारियों पर सख्त नज़र होती थी। उनका कहना था कि अब उनके काम उनके लिखने पे इतनी नज़र तो नहीं रखी जाती, लेकिन इखलाकी और समाजी लिहाज से सोसाइटी में बर्दाश्त कम हुई है।
पहले ये था कि हम लोग को पता था कि स्टेट और गवर्नमेंट किस नज़र से देखते हैं इन आर्ट्स को। अब ये है कि कोई भी हमारे ऑडियंस में से इस तरह का इंसान हो सकता है जो ये समझ रहा हो कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और हमें जो लोग ये कर रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए या ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और वो वहाँ पे हंगामा कर सकता है।
80 और 90 की थिएटर की कहानियों में या आज भी कभी खौफ से कहानियों के सब्जेक्ट्स पर समझौता किया या मुल्ला से मिलिट्री तक सभी पर बात की? शीमा किरमानी ने समझौते से साफ इनकार किया।
अब ये है कि ऑप्शंस नहीं रहे कि कॉम्प्रोमाइज्ड लाइन पे चलें और थोड़ी सी बात करें। हम लोग तो बहुत ओपनली और बहुत डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट के लिए हैं, हम लोग रिलीजियस फनाटिसिज्म के खिलाफ हैं, हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं।
कराची शहर के थिएटर की बात हो, डायरेक्टर, एक्टर और सहाफ़ी इमरान शिरवानी का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। कराची के थिएटर के गुजरे आज और कल पर उनका मानना था।
जितना थिएटर करना पहले मुश्किल था उसमें और आज में कोई खास फर्क नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, जिसे आप अदम बर्दाश्त के रवैये कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा असर कराची के थिएटर में 90 के दहाई के शुरू में था। जिनका बैकग्राउंड खासा ऐसा था, जिनको जिन्होंने वायलेंस को रेजिस्ट किया है या फेस किया है या खुद वायलेंस का हिस्सा रहे हों। अब हम देखते हैं कि जो बड़ा इशू है वो ये नहीं है कि क्या वायलेंस जो है वो लोगों को थिएटर करने से रोक रहा है या एक्टर्स को या एक्टिविस्टों को किसी किस्म की प्रॉब्लम बन रहा है। असल इशू जो है वो ये है कि जो अभी थिएटर करने की जगह है वो कम से कम है कराची में।
इमरान शेरवानी का कहना था कि थिएटर आज भी होता है, बल्कि लिखने वाले जुबाबंदी के अलावा भी मुद्दों का चुनाव करके लिख रहे हैं, मगर मिलिट्री रूल में लिखने का जो मजा और जो चाशनी थी वो शायद अब नहीं।
एक तो हमें नजर आता है कि हमारे शहर का जो एक ओवरऑल जो रवैया है नौजवान नई नस्ल का, वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत पॉजिटिव है, और वो बैठ के बहुत सी ऐसी चीजों पर बात कर लेते हैं जो पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। गिनती के लोग थे जो ये खुल के बात करते थे, अब नौजवान जो हैं वो बेतहाशा छोटे छोटे ड्रामे बनाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस पे बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि अब नौजवानों में लगता है कोई होप जो है वो ख़त्म होती जा रही है, बहुत तकलीफ दह सिचुएशन होती है ये।
कराची शहर, मेरा शहर, रोशनियों का शहर आज भी सांस लेता है, हंसता है, मुस्कुराता है और कितने ही बेघरों को एक माँ की तरह थाम लेता है।
अंदर रोड से के माड़ी मेरी चली हर घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर।
कराची की बंदर रोड से के माड़ी के साहिल तक लोग रोज जीने की लगन में नई सुबह खोजते हैं और यही इसकी खूबसूरती है।
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली हर घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर।
तो जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान के कराची शहर में आज थिएटर की क्या स्थिति है। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में भारत के साकेत मायनेनी ने पहले दौर में 49वीं रैंकिंग वाले चेक गणराज्य के जेरी वेस्ली के खिलाफ दमदार खेल दिखाया, लेकिन जांग में खिंचाव के कारण वो जीतते जीतते रह गए। 143वीं रैंकिंग वाले साकेत मायनेनी अंततः 6-7, 6-4, 6-2, 2-6, 5-7 से हार गए। अगर साकेत मायनेनी जीत जाते तो अगले दौर में उन्हें शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच से खेलने का अवसर मिलता, जिन्हें पोलैंड के जेर्जी यानोविच को हराने के लिए 4 सेट तक पसीना बहाना पड़ा। जोकोविच 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 से जीते। वहीं चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने उज्बेकिस्तान के डेनिस स्टोमिन को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। महिला एकल वर्ग में 8वीं वरीयता हासिल अमेरिका की मेडिसन केस, 9वीं वरीयता हासिल रूस की स्वेतलाना कुजनेसोवा, 3री वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा, 7वीं वरीयता हासिल इटली की रोबर्टा विंसी और 2री वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्वर ने पहले दौर में जीत के साथ शुरुआत की। वहीं अखिल भारतीय टेनिस संघ की चयन समिति ने 16 से 18 सितंबर तक स्पेन के खिलाफ होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले के लिए कोरिया के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल करने वाले चारों खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। इनमें साकेत मायनेनी, रामकुमार रामानाथन, रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस शामिल हैं। उधर भारत के पहलवान योगेश्वर दत्त का लंदन ओलंपिक में जीता गया कांस्य पदक रजत पदक में बदल गया, क्योंकि रूस के बासिक कुदुखो को डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद अपना रजत पदक गंवाना पड़ा। हालांकि कुदुखोव का साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका है। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त क्वार्टर फाइनल में कुदुखोव से हार गए थे, लेकिन कुदुखोव के फाइनल में पहुंचने से उन्हें रेपेचेज के माध्यम से कांस्य पदक जीतने का अवसर मिला। इसे लेकर लंदन ओलंपिक में भारतीय कुश्ती दल के कोच रहे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित यशवीर सिंह कहते हैं,
तेरा दोस्त है ठीक है, आज 4 साल के बाद बदला, लेकिन कोई तो बात है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज से सिल्वर होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ ठीक है, वो रशियन लेके पहलवान निकला उसकी उसमें हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मैं भले ही 4 साल बाद ये चेंज हुआ है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कुश्ती के लिए भी और योगेश्वर के लिए और हम सभी के लिए, देश के लिए पूरे खुशी का मौका है ये।
तो योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक बदल सकता है रजत पदक में, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए इंतजार करना होगा।
और खेल समाचारों में ही हम आपको बता दें कि नॉटिंगम में खेले गए तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 169 रनों से हराकर 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है और पाकिस्तान की पूरी टीम 42.4 ओवर में 275 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन ये मैच इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 445 रनों का लक्ष्य दिया था और इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में केवल 3 विकेट के नुकसान पर 444 रन बनाए और वनडे इंटरनेशनल में ये किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। और अब कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर को 242 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है और केंद्रीय कर्मियों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। इससे नाखुश वामपंथी मजदूर संगठनों ने 2 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। भारत के दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। जॉन कैरी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी समाचार एजेंसी अमाक ने कहा कि सीरिया के अलेप्पो में आईएस के एक बड़े प्रवक्ता की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। इसके बाद विश्वभारती कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।